بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف آج ایران کے دینی تعلیم کے مراکز میں احتجاج کیا گیا. دینی تعلیم کے عالمی مرکز قم سمیت پورے ملک کے دینی مدارس اور اعلیٰ دینی تعلیم کے مراکز بطور احتجاج بند رہے، اور اساتذہ و طلباء نے احتجاجی اجتماعات میں شرکت کر کے کوئٹہ اور کراچی کے دہشت گردانہ حملوں کو شیعہ مسلمانوں کے منظم نسل کشی قرار دیا اور اس کی مذمت کی. ایران کے بزرگ علماء کرام نے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کو شیعوں کے خلاف عالمی سازش کا حصہ قرار دیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آج پاکستان میں کوئٹہ سے لے کے کراچی، گلگت بلتستان، پارا چنار تک، بلکہ پورے پاکستان میں جس طرح شیعہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، وہ معمولی دہشت گردی ہے یا شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی کی منظم سازش. اگر یہ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی نسل کشی کی منظم سازش ہے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ عراق، شام، بحرین اور سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی منظم سرکوبی سے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کے ارباب حل و عقد اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں اس حقیقت سے واقف ہیں یا نہیں کہ پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی کی معمولی واقعات نہیں ہیں، بلکہ اس قوم کا منظم نسلی تصفیہ ہے جس نے قیام پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اس ملک کے استحکام میں بھی بنیادی کردار ادا کیا ہے. اور اگر وہ اس حقیقت سے واقف ہیں تو اس کو روکنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی گئی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب کو. لندن اسٹوڈیو سے اس مباحثے میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور، سیاستداں اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شریک کیا جائے گا جعفریہ الائنس کے رہنما مولانا عباس کمیلی صاحب کو. لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں.
پاکستان میں شیعوں کے قتل عام پر اسلامی جمہوریہ ایران میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مقدس شہر قم سمیت تمام شہروں کے دینی مدارس کے طلباء اور بزرگ علماء کرام نے ان مظاہروں میں شرکت کی. حضرت معصومہ قم کے روضہ اقدس سے متصل مسجد اعظم میں طلباء اور علماء کرام کا بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں مراجع تقلید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ حسین نوری حمدانی اور آیت اللہ جعفر سبحانی جیسی بڑی شخصیات نے شرکت کی. احتجاجی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی. اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ ہی مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، چنانچہ ہمسایہ ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے واقعات اور بے گناہ عوام کے قتل عام پر عوام اور علماء کرام کا یہ رد عمل فطری ہے. شیعوں پر دہشت گردانہ حملوں کے تازہ ترین واقعے میں گزشتہ اتوار کی شب کراچی کے عباس ٹاؤن میں بڑا بھیانک دھماکہ ہوا، جس میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے. اس سے پہلے بھی کراچی اور دیگر شہروں میں شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی رہی ہے. پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق ملک بھر میں جو ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں ان میں 40% سے زیادہ کا تعلق کراچی سے تھا. پاکستان کا صنعتی و تجارتی مرکز کراچی ایک زمانے سے لہو لہان ہے اور وہاں تشدد کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں۔ کراچی یا دیگر شہروں میں جو حملے ہو رہے ہیں ان میں جس مقدار میں دھماکہ خیز مواد استعمال ہوتا ہے اور دھماکہ خیز مواد کی نوعیت جو ہوتی ہے اس کے پیش نظر ماہرین یہ سوال کرتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں کی پہنچ اس قسم کے مواد تک کیسے ہو جاتی ہے اور اس مقدار میں دھماکہ خیز مواد حاصل کرنے کے لیے انہیں پیسہ کہاں سے ملتا ہے اور پھر یہ تنظیمیں کس طرح اتنی بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ یہ بڑے بنیادی قسم کے سوالات ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اندر بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ انتہا پسند تنظیموں کے تعلقات سیکیورٹی اداروں سے بھی ہیں۔ اس ضمن میں پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک بھی کہہ چکے ہیں کہ لشکر جھنگوی کو صوبہ پنجاب میں پورا تحفظ حاصل ہے اور مسلم لیگ نون کو واضح کرنا چاہیے کہ اس تنظیم سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اس تنظیم نے شیعوں پر ہونے والے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسی طرح فوج پر بھی یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ انتہا پسند تنظیموں سے اس کے تعلقات ہیں۔ چنانچہ پاکستانی فوج کے ترجمان کو اس سلسلے میں صفائی دینی پڑی کہ انتہا پسند تنظیموں سے اس کے تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ انتخابات میں خلل اندازی کریں اور انتخابات اپنے وقت پر کرائے جائیں گے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جمہوری حکومت نے اپنی مدت پوری کی ہے اور انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تاہم تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ موجودہ حالات جاری رہے تو انتخابات کا انعقاد مشکل ہوگا۔ پاکستان میں انتہا پسند تنظیموں کی چیرہ دستیاں سب پر آیا ہیں اور عوام خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ان سے بیزار ہیں، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ پاکستانی قوم ان انتہا پسند تنظیموں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتی، لیکن یہ بھی طے ہے کہ ان تنظیموں کو اسی ملک کے اندر ٹھکانے بھی مل جاتے ہیں، بڑی مقدار میں اسلحہ اور پیسہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور یہ تنظیمیں نہتے عوام کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اور اپنے ناجائز مطالبات تسلیم کروانے کے لیے حکومتی اداروں حتیٰ فوج اور خفیہ اداروں پر بھی حملے کر دیتی ہیں اور اس میں انہیں کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ جب تک یہ صورتحال قائم رہے گی انتہا پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔
یہ ناظرین، پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف منظم دہشت گردی اور نسل کشی سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قندیل عباس صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
قندیل عباس صاحب، پاکستان میں کوئٹہ اور کراچی میں خاص طور پر اور پورے ملک میں جس طرح سے شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے اور دھماکوں میں ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دہشت گردی کے معمولی واقعات ہیں یا شیعہ مسلمانوں کی منظم نسل کشی ہے؟
جی قطن اس کو غیر معمولی واقعات تو کسی صورت قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان کی اگر پوری تاریخ کو ہم دیکھیں تو 65 سالہ تاریخ میں جو گریجولی واقعات ہوتے رہے ہیں، ابھی ہمیں اس کی پیک نظر آ رہی ہے پاکستان میں، اور خصوصاً جو نوعیت اختیار کر رہی ہے ان واقعات نے، یعنی جہاں پہ پہلے صرف ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، ایک دو تین لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، یا پھر صرف محرم کے ایام میں ایسے واقعات ہوتے تھے، یا عید میلاد النبی کے موقع پر ایسے واقعات ہوتے تھے، اب ان کو ایک عمومیت مل گئی ہے اور سال کا کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں دہشت گرد اپنی کاروائیاں نہ کریں، اور پھر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر دہشت گرد اپنی کاروائیاں نہ کریں، نہ تو کوئی امام بارگاہ محفوظ ہے، نہ کوئی مسجد محفوظ ہے، نہ کوئی بازار محفوظ ہے، نہ کوئی گلی نہ کوچہ۔ اور ابھی جیسے ہم نے کراچی میں دیکھا، ایک رہائشی علاقے میں جہاں پہ عورتیں بچے بوڑھے گھروں میں اپنی سکون کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر بھی اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں، تو قطعاً اس طرح کے واقعات کو ہم غیر معمولی واقعہ قرار نہیں دے سکتے۔ اور خصوصاً اس کو ایک جنرل اوورال ویو میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سوویت یونین افغانستان سے آیا اور اس کے بعد گیا تو اس دوران ایک ایسا عدم برداشت کا کلچر پاکستان میں ڈیولپ ہوا اور اس پروان چڑھا کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے اندر سے وہ برداشت کا عنصر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور ایک ایسے خاص قسم کے گروہ کی پرورش ہوئی اور ایسے گروہ پروان چڑھے جنہوں نے صرف اور صرف گولی اور زور کی بنیاد پر اپنا ایک خاص نظریہ دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کی روش اختیار کی. اور ظاہر ہے یہ وہ روش ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی معاشرہ قبول نہیں کرتا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے پرامن عوام بھی اس کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن چونکہ پاکستان کی ایک عمومی جو فضا ہے یہ مذہب کے ساتھ ایک وابستگی ہے یہاں کے عوام کی، وہ شیعہ ہوں یا سنی یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مذہب سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں. اور ان عوام کے اوپر جب ایک خاص نظریہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی، وہ نظریہ خود شیعہ کے اوپر اور سنیوں دونوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ نظریہ عمومی طور پر ریجیکٹ کیا گیا، اور خاص طور پر اس میں شیعہ کی طرف سے ریزسٹنس زیادہ اس لیے آئی ہے کہ جو دنیا کے جو مسلم ورلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد جو ایک اسلامی بیداری کی تحریک 1979 میں شروع ہوئی، اس کا ایک واضح اثر ہم نے دنیا کے معاشروں میں جو شیعہ پاپولیشن تھی اس کے اندر دیکھا. وہ ہم لبنان میں دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، کویت میں دیکھیں، سعودی عرب کے اندر دیکھیں، یا پھر پاکستان اور افغانستان اور انڈیا کے اندر ہم دیکھیں، تو یہاں پر جو شیعہ بستے تھے انہوں نے کسی بھی طبقے کے خلاف کسی جب بھی ظلم ہوا تو انہوں نے آواز بلند کی، اور شیعہ نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک پیسفل قوم ہے، پیسفل نیشن ہے، اور پیسفل انداز میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اسی بنیاد پر خود پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ اتحاد بین المسلمین کی آج تک جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس کا انیشیٹو شیعہ مسلمانوں کی طرف سے لیا گیا، اور اس میں خود اہل سنت کی جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا. اور ایک اہم ترین نقطہ پچھلی 20-25 سالوں کے دوران مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کی بھرپور ایک یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں ایک فرقہ وارانہ فضا پیدا کر کے ایک فرقہ واریت کا ماحول پیدا کر دیا جائے. لیکن ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس سازش کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس سازش کو اپنے گلی کوچوں میں نہیں آنے دیا، اور دہشت گرد ایک آئسولیٹڈ گروپ بن کر ایک کونے میں لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کی کاروائیاں کر کے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ گلی کوچوں میں فسادات ہوں. آج تک ہم پاکستان میں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی گلی کوچے میں مذہب کی بنیاد پر کوئی فساد ہوا اور ہمسائے نے دوسرے ہمسائے کو یا ایک گلی والوں نے اپنے دوسرے گلی والوں کو، ایک محلے والوں نے دوسرے محلے والوں پر اس بنیاد پر حملہ کیا ہو کہ وہ ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہم ابھی ہم عباس ٹاؤن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مرنے والے شیعہ بھی تھے اور سنی بھی تھے، اس کے بعد جب امدادی کاروائیاں ہوئی ہیں تو اس میں شیعہ سنی مل کر شامل ہوئے ہیں. اور پھر آج کا واقعہ ہے، یعنی آج نماز ظہر کے بعد خود پشاور میں جس مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، ایک وہ اہل سنت کی مسجد تھی اور وہاں پر اہل سنت اس میں شہید ہوئے ہیں. تو ایسی وجوہات میں ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً اس طرح کے واقعات کو غیر معمولی واقعات ہیں، اور اس پر خود پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ کنسرن ہے. اور آج جیسے ایک طرف تو سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا اور بڑے سنجیدہ اقدامات سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. خود صدر آصف الزرداری کراچی پہنچے اور انہوں نے رینجر اور پولیس کو فری ہینڈ دینے کی بات کی، لیکن عوام کو ان سارے اقدامات، اعلانات کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کے جب نتائج سامنے آئیں گے تو وہ توقع کر رہے ہیں کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے یا نہیں. اگر ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا تو پر امن انتخابات کی بھی توقع کر سکتے ہیں، پاکستان میں کسی اقتصادی ترقی کی بھی توقع کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں ایک پر امن فضا کی بھی توقع کر سکتے ہیں. ادروائز جو فیوچر بنے گا اس میں یہ ذرا ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ جب خود عوام سرکاری اداروں سے ہٹ کر خود اپنے دفاع کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے تو پھر کس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ قندیل عباس صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو میں بر صغیر کے ممتاز دانشور، سیاستداں اور تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی موجود ہیں. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
زیدی صاحب، پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی منظم نسل کشی کے پیچھے کون ہے؟
जी मुनज़्ज़म ये नस्ल कुशी यकीनन मुनज़्ज़म है, और इसके पीछे वो तमाम अनासिर हैं जिन पे हमें ये देखना चाहिए कि इसके बेनिफिशरीज कौन हैं। आज पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की एजेंसीज और उनके जो लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस मुनज़्ज़म नस्लकुशी का हिस्सा हैं। वो इसलिए हिस्सा हैं कि इस नस्लकुशी में सऊदी अरब और बाहर के और दीगर ममालिक नेबरिंग कंट्रीज़ और अमेरिका भी इसमें शामिल है। ये बात सब पे वाज़े है और दुनिया में कोशिश की जा रही है अमरीकी साम्राज्य की जानिब से कि शिया सुन्नी फिसाद खड़ा हो जाए, जो उन्होंने इराक में कोशिश की, उसके बाद और ममालिक में कोशिश की, अब शाम में भी कोशिश हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है। लेकिन इसके अलावा वो हुकूमत जो नुमाइंदा हुकूमत कहलाती हो और अवाम के मुंतखब हुकूमत का ऐलान भी करती हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहरियों के जान और माल का तहफ़ करे। महज बयानबाजी, हमने देखा है कि और लिकी वीक पे भी आया और सब जगह, और अब तो लिकी वीक पे इसके बारे में भी आ चुका कि ये बयानबाजी करने वाली हुकूमत है, और जो हज़ब इख्तलाफ हैं, बज़ाहिर वो कहलाते हज़ब इख्तलाफ हैं लेकिन वो भी इसमें शामिल हैं, ये बयानबाजी की हद तक तो ठीक हैं। ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ बयान देते हैं लेकिन अंदर से अरेंजमेंट होता है कि ड्रोन हमले होते रहें। बाय नहीं, क्वेटा में आपने देखा वज़ीर आज़म चले गए, गवर्नर राज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके फ़ौरन बाद एक और बड़ा धमाका हुआ। कराची में बयान देने से काम नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान में कत्लेआम जो है शिया और सुन्नी दोनों का हो रहा है, मासूम इंसान मारे जा रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान के वो अदारे भी मुलव्विस हैं जो इसके बेनिफिशरीज हैं, और वो इस तरह बेनिफिशरीज हैं कि दहशतगर्दी होती है तो बिलियंस डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को मिलते हैं। अगर दहशतगर्दी बंद हो जाए तो फिर ये बिलियंस डॉलर्स बनने मिलने बंद हो जाएं। यहाँ पर हाइड पार्क से लेके और दुनिया के तमाम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की पसंद ममालिक हैं, उनमें ये जो सियासतदान हैं और में दीगर अदारों के भी लोग हैं, ये यहाँ मिलियंस और मिलियंस डॉलर्स की जो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं वो फिर बंद हो जाएगी। इनके जो रोज़मर्रा के अय्याशी और एक नवाबाना और बादशाहाना अंदाज ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेनिफिशरीज हैं इस दहशतगर्दी के, रियासती अदारों ने इनको पाला हुआ है। कौन नहीं जानता कि सिपाही सभा किसने क्रिएट की थी, और सिपाही सभा ऐलानिया ये कहती है कि हमने ये किया है, इनको मालूम है कि सिपाही सभा ने किया है, ये पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर ये हमले होते हैं और फिर ये पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो पकड़ते हैं उसका कुछ नहीं पता चलता कहाँ गए क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये खून की गोली जो खेली जा रही है ये बिल्कुल एक मुनज़्ज़म साजिश कहा जाए या मुनज़्ज़म अमल है, जिसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान भी गैर मुस्तकम हो और लोग जो हैं वो आपस में इंतशार का शिकार रहें और खून से उनके जो जिस्म हैं वो भी और पाकिस्तान भी खून से नहाया रहे, और इसके फ़ायदे रूलिंग क्लासेस जो हैं उनको मिलते रहें, और वो जरदारी साहब के तारीफ गो लोग हों या उनके मुखालफत में लोग हों, अमल एक ही है कि हुकूमत इस तमाम कत्लेआम में मुलव्वस है। उन्होंने बहुत से लोग, टीवी एंकर्स भी, टीवी पर भी लोग ये रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, जो ये ऐलान करते रहते हैं, ये तासुर देते रहते हैं कि जनाब हुकूमत तो बहुत कुछ कर रही है। देखें, उन्होंने बयान दे दिया। बयान देना काम नहीं होता हुकूमत का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को एक्टिव करके अपने अवाम के जान और माल का तहफ्फुज करे, और जब जान और माल के इवज बिलियंस डॉलर्स मिलते हों फिर वो तहफ्फुज नहीं करते।
बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब जैदी साहब। और नाजरीन, हमारा राबता टेलीफोन लाइन के जरिए इस वक्त बरकरार हुआ है जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना अब्बास कुमैली साहब से। कुमैली साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
कुमैली साहब, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के कत्लेआम का शियों के खिलाफ इराक, सऊदी अरब, बहरीन समेत पूरी दुनिया में जारी आलमी साजिश से क्या ताल्लुक है?
बिल्कुल, इसका आलमी साजिश से ताल्लुक जरूर है, इसलिए कि ये कत्लेआम जो है शियों का न सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है बल्कि आप ये देखें कि शाम में भी, इराक में भी ये कत्लेआम हो रहा है, वहां भी धमाके कराए जा रहे हैं इराक में, इसलिए कि उन्हें शियों की हुकूमत हजम नहीं हो रही है
जी।
ये वहां भी करा रहे हैं और ये अलकायदा के लोग वहां पहुंच चुके हैं। ये अलकायदा हो, जंगवी लश्कर जंगवी हो, सिपाही साहबा हो या तालिबान हो, ये सब एक ही अकीदे के लोग हैं। ये सऊदी से, सऊदी अरेबिया से इनका खास ताल्लुक है, वहीं से इनकी परवरिश हुई है और ये वही अकीदा हर जगह मुसल्लत करना चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक के मेरी मालूमात के मुताबिक बरतानिया में भी ये यही काम कर रहे हैं और जबरन लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वरना दहशतगर्दी की धमकियां दी जाती हैं और 9/11 के भी यही जिम्मेदार हैं। तो ये एक आलमी साजिश जरूर है, इसलिए कि शियत उभर रही है दुनिया के ग्लोब पर और इस्लामी इंकलाब के बाद जो है तशय्यों का अहिया हो रहा है और पूरे बेल्ट में मिडल ईस्ट के जो है तशय्यों का सूरज बड़ी आफताब के साथ तुलू हो रहा है और इन्हें पाकिस्तान में भी खतरा है तशय्यों ही से, चूंकि पाकिस्तान का बॉर्डर भी मिलता है आपसे, इस वजह से ये सब सारी दुनिया में ये दहशतगर्दी करा रहे हैं और यही वही एक ही तबका है जो अपना अकीदा बिल जबर मुसल्लत करना चाहता और अपने सिवा किसी को मुसलमान नहीं समझता
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। कंदील अब्बास साहब, जनाब एक बात खास तौर पर मुस्लिम रहनुमाओं की तरफ से कसरत से कही जाती है कि दहशत गर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है और इसको किसी भी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। सही बात है, लेकिन जब किसी मुस्लिम फिरके के उलमा दूसरे फिरके को काफिर करार दे के उनके वाजिबुल कत्ल होने का फतवा सादिर करें और उनकी जानो माल और इज्जत व आबरू पर हमले को जायज करार दें, तो क्या इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि दहशत गर्दी को मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता?
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ये समझें कि इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला कोई मकतबा फिक्र वो इस तरह का फतवा दे सकता है, इसकी गुंजाइश तो हमें तस्लीम और रजा वाले मजहब में नज़र नहीं आती, क्योंकि इस्लाम का मजहब है पीस, टॉलरेंस और इसमें इत्तेहाद की बात होती है और एक जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है उस उम्मा के कॉन्सेप्ट में तो किसी जगह पे भी ताकत के इस्तेमाल की कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह हिस्ट्री से हमें बहुत से ऐसे वाकयात मिलते हैं कि दुश्मन के गुमाश्ते मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ लिबादों में खुद मुसलमानों की सफ़ों के अंदर घुसे और ऐसे ऐसे उन्होंने मकतब ईजाद किए और ऐसे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट बनाए कि जिनके ज़रिए दुश्मन की कोशिश ये थी कि मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा किया जाए, आज जिस तरह के फतवे हमें नज़र आ रहे हैं मुझे इसकी रूट्स उन्हीं साजिशों के अंदर नज़र आती है। और आज जाहिर है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से उदा बरा होने के लिए बड़ी आसानी से यहाँ पर कह देते हैं कि इस साजिश में कोई बैरूनी हाथ मुलविस है, लेकिन यकीन जानिए कि जितने भी वाकयात हम देखते हैं, जब भी कोई उसमें गिरफ्तार होता है, जब भी किसी सुसाइड बम्बर का सर मिलता है, तो हमें नज़र आता है कि सब के सब वो पाकिस्तानी है और इसमें कभी किसी गोरे का सर नहीं मिला, कभी किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क के बंदे का सर नहीं मिला, टूल हम खुद बनते हैं, हम उनको मौका फराहम करते हैं कि आए हम आपको इसमें फैसिलिटेट करेंगे। यहाँ पर जो बड़े बड़े मुफ्ती अपने आप को कहलाते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि ये फतावा जो अगर कोई देता है तो उससे आप अपनी लातालुकी का इजहार करे अगर उसको आप पसंद नहीं करते, अगर आपने ये फतवा नहीं दिया इस तरह का, तो उसे कम अज़ कम लातालुकी का इजहार करें। लेकिन हमें बड़े मारूफ और मशहूर जो सियासी मजहबी रहनुमा हैं उनकी तरफ से इस तरह का रद्द अमल नज़र नहीं आता, और वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि जो फतवों की एक फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई है और चार लफ्ज़ पढ़े हुए भी लोग नहीं हैं जो ये फतवे दे रहे हैं, और उसी बुनियाद पर बिल्कुल मासूम बच्चों को गुमराह करके उन फतवों की बुनियाद पर, आप यकीन जानिए कि अभी कुछ अर्सा पहले मीडिया पे भी इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि वो नौजवानों के हाथ में जन्नत का टिकट थमा रहे हैं, उसके ऊपर साइन करके कहते हैं लें जी आप जा रहे हैं जन्नत में। अब ये एक नौजवान मासूम बच्चा जिसको पता ही नहीं है कुछ, उसको ब्रेन वॉश करते हैं, उसके ऊपर बड़ा अच्छा अपने टेक्निकल काम करके उसको इन कामों में लगाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि ये जो शाखें हैं इसकी बजाय रूट्स के अंदर जाकर देखें, अगर नेटवर्क को तोड़ना है, उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरत यह है कि जहां से ये फतवे निकल रहे हैं उनको रोका जाए, और जो लोग इस मजहब में, जो पीसफुल मजहब है इस्लाम का, एक जो 1400 साल की तारीख है उसमें अगर हम देखें तो हर जगह पर अमन का पैगाम दिया इस दीन ने, और एक वाज़ह तौर पर हर मकतबे फिक्र की तरफ से ये कहा जाता रहा कि कहीं पे भी तलवार के और ताकत के जोर पर इस्लाम नहीं फैला। लेकिन आज जो लोग, एक खास नुक्ता नजर है उनका, और वो ताकत के जोर पर बाकी सारे मकातब फिक्र पर मुसल्लत करना चाहते हैं, और पाकिस्तानी अवाम को भी और जो मिडिल ईस्ट में और बाकी दुनिया की जो इस्लामी दुनिया के लोग हैं उनको भी इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि इन लोगों का इस्लाम से कम कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ये इस्लाम के लबादे में दुश्मन के एजेंट हो सकते हैं, और इस्लाम के अंदर आकर वो इस तरह की साजिशें करना चाहते हैं जिससे एक तरफ तो ये कि खुद मुस्लिम दुनिया के अंदर कमजोरी पैदा हो, मुस्लिम दुनिया कमजोर हो जाए, इस्लामी मुल्कों की जो ताकत है वो खत्म हो जाए, और ये माहौल पैदा करके वो दुश्मन को वो माहौल फराहम करना चाहते हैं कि वो आकर अपनी साजिशें पूरी कर सकें। जाहिर है कि जो लोग मजहब को दहशतगर्दी के साथ जोड़ रहे हैं वो काबिले मुज़म्मत हैं, और उनको आश्कार किया जाना जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। जनाब, इंतहा पसंद ग्रोहों, तालिबान, अलकायदा और उनसे वाबस्ता ग्रोहों के हमलों को बहुत से लोगों की तरफ से जिहादी कार्रवाइयों का नाम दिया जा रहा है, और बहुत सी मजहबी जमातें और तंजीमें न सिर्फ ये कि उनकी कार्रवाइयों की मजम्मत नहीं करती हैं बल्कि बाज औकात बिलवास्ता तौर पर हिमायत भी करती हैं। क्या इसके बाद भी आप दुनिया को ये बावर करा सकते हैं कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है?
जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया
जी,
इस कारोबार में बेशुमार दौलत इन्वॉल्व है
जी।
पाकिस्तान में ये जो दर्शगाहें हैं ये बम साज फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। जितने वहाँ के ये सलफीज या मुल्लाज जो इन्वॉल्व हैं इसमें, उनके आप रहन सहन देखें, उनके आप बाहर की दुनिया में आते हैं, उनके जो फंड्स हैं, उनके बैंक बैलेंसेस हैं, वो सब देखें, तो फिर इसका यानी जो आलमी साम्राज्य जो इनके ज़रिए हासिल करना चाहता है ये उसके खिदमत गुजार हैं, और दहशतगर्दी के एवज बेशुमार पैसा और मरात वसूल करते हैं। अब दहशतगर्द जिहाद के नाम पर या जिहाद के नाम पर जो दहशतगर्दी क्रिएट की जा रही है, ये दहशतगर्द जिहाद के नाम पर कर रहे हैं, और आलमी साम्राज्य रियासती दहशतगर्दी डेमोक्रेसी के नफाज के लिए ये कत्ले-आम दुनिया में कर रहा है, जंगें मुसल्लत कर रहा है। तो पाकिस्तान में जब ये जिहाद का तसव्वुर क्रिएट किया गया और ज़ियाउल हक ने इसकी परवरिश की, और फिर ये जिहादी तंजीमें अलकायदा, तालिबान, अलाबला सारी दुनिया में जो क्रिएट की गई, तो आपको मालूम है कि सऊदी अरब और अमेरिका का पैसा, ट्रेनिंग, असला और बरतानिया से भी, स्ट्रिंगर मिसाइल हों या आम कलाशनकोफ जो कि रूस की साख की बनी हुई असला जो है वो मिडल ईस्ट से गया था, तो ये सब का सब इसके पीछे साम्राज्य है। और जिहाद का नाम दिया गया, मिसेज थैचर ने जाके बंदूक लहरा के कहा कि जाओ जिहादियों और जाकर इस्लाम का किला फतह करके और रूस को यहाँ से भगाओ, तो ये क्रिएट किया गया, उसमें पाकिस्तान के हुक्मरान शामिल थे। पाकिस्तान के ये मदरसे में जो इसमें एजेंसीज शामिल, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स इसमें शामिल था। तो जिहाद के नाम पर ये एक कारोबार है जिसमें बिलियंस डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, और जिहाद का नाम भी बदनाम और इस्लाम का नाम भी बदनाम। आज दहशतगर्द जो यानी वेस्ट में दहशतगर्द के नाम से इस्लाम और जिहाद दोनों को कंडेम किया जाता है, और यही वो हदफ ये हासिल करना चाहते थे। सैमुअल हंटिंगटन की किताब जब आई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसने जो तहजीबों के टकराव का सामने हदफ दिया था वो यही था कि ये टकराव के नतीजे में अब इस्लाम और दहशतगर्द एक खौफनाक शक्ल में दुनिया के सामने आ गए हैं, और वेस्ट का जो गरीब आदमी है जो सिर्फ टीवी के अलावा उसको कुछ नहीं मालूम होता खबरों के बारे में, वो ये समझता है कि मेरा मजहब भी बहुत अच्छा, मेरे हुक्मरान भी बहुत अच्छे, और दुनिया के ये दहशतगर्द जो हैं इनको मारा जाना चाहिए। जब ये तसव्वुर बनता है कि दहशतगर्दों को मारा जाना चाहिए, तो फिर जब नेटो की फोर्सेज वहां उतरती हैं तो फिर यहां की पब्लिक उसको सपोर्ट करती है। तो ये अलकायदा साम्राज्य के जो अजायम हैं मिडल ईस्ट में और दुनिया में और ग्लोब पर कब्जा, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये जो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं ये उसका हिस्सा बनते हैं, लालच हो या इकतदार की हवस
जी जी
उस हसूल के लिए ये आलमी साम्राज्य है, उसके जो बिछाए हुए नक्शे हैं उसका ये मोहरा बनते हैं और उसके लिए उसके मफादात का तहफ्फुज़ करते हैं, उसका काम करते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो मामला हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर का ही नहीं है, पूरे दुनिया का एक साम्राज्य का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो दुनिया पे मुसल्लत करना चाहता है, वहाँ के वसाइल दुनिया के जो हैं उन पर कब्जा करना चाहता है। अलकायदा तालिबान ये उसने बोगीज क्रिएट की हुई हैं, दहशतगर्द उसने क्रिएट किए हैं, तो उस सब के जरिए वो अपने हदफ हासिल करना चाहता है, और पाकिस्तान या तीसरी दुनिया के और जो ममालिक हैं उनमें उन्हें गद्दार वतन गद्दार कौम मिल जाते हैं। मुझे याद है उस वक्त मैं पाकिस्तान था
जी,
कि जब ज़ियाउल हक सिपाही सहाबा की तंजीम खड़ा कर रहा था तो उसमें शिया लीडर भी शामिल, और मैं नाम भी ले सकता हूँ, आका पोया जैसे लोग वहाँ ज़ियाउल हक के साथ बैठे थे, उसकी मजलिस शूरा में थे, और सिपाही साहबा जब बन रही थी तो ये उसका हिस्सा थे। तो अब दूसरे फिरकों के बारे में क्या कहा जाए, शिया फिरकों के अंदर से फिरके के अंदर से ही आपको मीर जाफर और मीर सादिक मिल जाते हैं, तो बाकी और फिरकों में से सलफीज में से ढूंढना तो बहुत आसान है।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास कुमैली साहब
जी,
जनाब तकफीरी उलमा और मुफ्ती हजरात
जी
मुखालिफ फिरकों के कुफ्र के फतवे सादिर करते हैं
जी,
जो मामूली सा भी उनसे किसी बात में इख्तलाफ करता है फौरन उसको काफिर करार देते हैं, आज तक किसी भी आलिम दीन और मुफ्ती ने यह फतवा सादिर किया है कि तालिबान अलकायदा और उनसे वाबस्ता ग्रोह लश्कर झंगवी और सिपाही सहाबा क्योंकि खुलेआम दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्दाना हमलों की जिम्मेदारी फख्र के साथ कबूल करते हैं, इसलिए ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं और इन्हें मुसलमान न समझा जाए?
इस किस्म का फतवा तो नहीं दिया, बल्कि जैसा कि अभी अभी मुझसे काबिल जो फाजिल जो गालिबन मैं नाम भूल रहा हूँ
अली जाफर
ने भी कहा कि इस किस्म का फतवा तो नहीं दिया, और फतवा दे रहा तो दरकिनार वो मजम्मत भी नहीं करते जिन अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। मैंने बे इंतहा कोशिश की जब मैं सेनेट का रुकन रहा हूँ कि मुत्तफका फतवा जारी करें, सर मजम्मत ना करें, सेनेट में भी ये मजम्मत करते थे, मजम्मत ना करें बल्कि मुत्तफका फतवा जारी करें कि सारे पांचों फिका के मानने वाले मुसलमान हैं और शिया और सुन्नी मुसलमा फिरते हैं और इन पर कुफर का फतवा देना हराम है और वो ये वाजिबुल कत्ल का फतवा देना हराम है, खिलाफ इस्लाम है। ले और एक और स्टेज पर तो मैंने एमक्यूएम के इजलास में जब शिया सुन्नी उलमा ने ये मुत्तफका फतवा तैयार कराया और उस पर दस्तखत भी हुए, दस्तखत भी हुए, लेकिन सेनेट में ये ना हो सका। और ये सुन्नी उलमा के साथ जब भी नशिस्तें हुई मैंने हमेशा इसी पर जोर दिया, लेकिन वो फतवा दस्तखत ना कर सके, सिर्फ जबानी मजम्मत करते हैं। इन्हें चाहिए कि इस किस्म का फतवा दें कि ये पांचों फिका के मानने वाले और उस पर अमल करने वाले मुसलमान हैं और शिया सुन्नी मुसलमान फिरके हैं इस्लाम के, इस पर फतवा कर, इस पर दस्तखत करने से ये गुरेज करते हैं, हमेशा गुरेज करते रहे। और जो जैसा कि मैंने कहा एक कोशिश तो हमने की थी, किसी हद तक कामयाब हुई, लेकिन उसमें बड़े बड़े जय्यद उलमा नहीं शामिल थे और बाजों ने तो फतवा फतवे में दस्तखत करने के बाद अपने दस्तखत कटवाए, कुछ लोगों ने तो दस्तखत करने से भी इनकार किया। तो ये सिर्फ जबानी कलामी करते हैं, दिल से ये उन्हीं के साथ है। खासतौर पर कुछ देवबंदी उलमा जो है देखिए कि इन सबका ताल्लुक मकतबे देवबंद से है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं कि जो इसकी खुल के मजम्मत करते हैं दबे अल्फाज में, लेकिन फतवे पर मुत्तफका फतवे पर या फिर अलकायदा और तालिबान उसके खिलाफ फतवे पे दस्तखत करना, तो ये हरगिज मेरा ख्याल है कभी भी तैयार नहीं होंगे। और ये अगर मगर करते मजम्मत करते हुए अगर मगर ये वो और कभी दोनों हमलों की तावील करते कि इसकी आड़ में इसकी हिमायत करते हैं, कभी कुछ कभी मुजाकरात के लिए पेशकश करते हैं, तो ये मुनाफिकाना पॉलिसियां हैं बाज उलमा की, बल्कि बहुत सारे जो जय्यद उलमा हैं उनकी और जमातों की भी। ये कभी तो इन तालिबान वगैरह ने इन पर इजहार एतमाद किया है मुजाकरात के लिए, जब से इनकी डोरे वहां से मिली हुई है तभी तो ये मुजाकरात की पेशकश करते हैं कि इनको जामिन बनाया जाए। तो ये है कि ये दहशतगर्दी खुली हुई दहशतगर्दी है, इसकी तो मजम्मत काफी नहीं है। कौन है जो मजम्मत नहीं करे? और आज के दिन इन्होंने फिर सुन्नी हजरात जो अहले सुन्नत है बरेली हकीकत में अहले सुन्नत है उनकी मस्जिद पर पिशावर में हमला किया है और दहशतगर्दी की है, और आज ही के दिन मसीहियों की आबादी को जला दिया गया है लाहौर में, और बहुत बड़ा वाकया लाहौर में पेश आया है। ये सिर्फ शियों के दुश्मन नहीं है, ये सबके दुश्मन है जो इनकी हाम में हाम न मिला, जो इनके अकीदे से इत्तेफाक न करे, बल्कि देवबंदियों में भी बाजों पे इन्होंने हमले किए, उन पे कत्ल करने की कोशिश की, जो इनकी मुकम्मल तायीद नहीं करते। तो ये तो वैशी अनासिर है, ये तो इंसान भी नहीं है, मुसलमान तो दरकिनार, ये तो इंसान भी नहीं है, वैशी दरिंदे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कंदील अब्बास साहब, पाकिस्तान के अरबाब हल वक्त और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां और जिम्मेदार इदारे इस हकीकत से वाकिफ हैं या नहीं कि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दहशतगर्दी के मामूली वाकयात नहीं है बल्कि उस कौम का मुनज्जम नस्ली तस्फिया है जिसने क्याम पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस मुल्क के इस्तेहकाम में भी बुनियादी किरदार अदा किया है?
जी कतन, ये तो किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं कि एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी और दुनिया के हर मुल्क के कानून में ये बात मौजूद है कि अपने शहरियों का तहफ्फुज स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और ये अलग बात है अगर स्टेट को मालूम है किसी इशू का या नहीं मालूम, ये जिम्मेदारी स्टेट की बनती है कि वो अपने शहरियों को तहफ्फुज दे। और बहुत सी जगहों पर हमने देखा जब स्टेट अपने शहरियों को अगर तहफ्फुज देने में उसका कोई हिस्सा नाकाम हो जाता है तो वो सरेंडर कर देता है, इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा ये काम। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इसमें भी जाहिर है कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, और अवाम का इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि भरोसा है स्टेट के ऊपर और हुकूमती इदारों के ऊपर। लेकिन जो हालिया लहर आई है, इसमें क्वेटा का वाकया हुआ है और कराची का वाकया हुआ है, इसके बाद पहली दफ़ा महसूस हुआ कि सिर्फ शिया के अंदर नहीं हर पाकिस्तानी के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि स्टेट के बाज़ इदारे ऐसे हैं कि जो उनको तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम हो रहे हैं। और देखिए आप अल्ताफ़ हुसैन साहब वहाँ से बैठकर कहते हैं कि आपको अपने तहफ़ का ख़ुद इंतज़ाम करना पड़ेगा, यानी आप कराची के अंदर या सिंध के अंदर देखें तो गवर्नर साहब MQM से हैं, अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ पर गवर्नर राज नाफिज किया गया और उसका बराह रास्त मकसद ये था कि हुकूमत ने जो सूबाई हुकूमत थी उसको मुअत्तल कर दिया आवाम के मुतालबे पर, लेकिन वहाँ पर गवर्नर राज आने का मतलब ये था कि फेडरल कंट्रोल होगा, मरकजी हुकूमत का कंट्रोल होगा, लेकिन इसके बावजूद क्वेटा में भी वाक़ होता है, कराची में भी वाक़ होता है, लाहौर के अंदर भी वाक़ात हो रहे हैं, पंजाब के अंदर भी हो रहे हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में ये वाक़ात हो रहे हैं। ऐसी सूरत में जाहिर है कि मैं समझता हूं कि अब ये आखिरी मौका नजर आ रहा है कि अब भी जाहिर है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी पहली दफा संजीदगी से एक नोटिस लेना पड़ा है और पाकिस्तान के वजीर आजम को इन्वॉल्व होना पड़ा, सदर को इन्वॉल्व होना पड़ा, इंटीरियर मिनिस्टर को वाज़ेह तौर पर सामने आना पड़ा, लेकिन इस दफा ये आखिरी मौका मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि अब बयान से काम नहीं चलेगा और अगर अब जो बयान सामने आए हैं, जो इकदाम हो रहे हैं, इसके अमली नतज का असरात आवाम तक नहीं पहुंचेंगे तो पाकिस्तान में जो मैं एक भयानक फ्यूचर देख रहा हूं उसमें एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जिसमें जाहिर है कि वो दुश्मन की कामयाबी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की हर चीज को वो तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ये वो सूरत हाल है कि जिसमें पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर जो इस्लामी बेदारी की एक तहरीक उठी है उसको काउंटर करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसको यानी इस अंदाज में स्पॉन्सर कर रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर कर दें, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो जाहिर है इसको स्टेट से स्टेट का तो नुकसान होगा और पाकिस्तान का और मुस्लिम दुनिया के अंदर भी ऐसे नुकसानात होंगे, लेकिन इस पूरी मूवमेंट के बाद जब आवाम खुद निकलकर बाहर निकलेंगे और सड़कों पर आकर अपने तहफ्फुज़ को खुद कहेंगे, जैसा कि हम कराची में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें पता है कि दहशतगर्दों के ठिकाने कहां पर हैं, हम बताने को तैयार हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, आप आए इकदाम करें। जब एक आम आदमी, एक पार्लियामेंट का मेंबर, एक सेनेट का मेंबर कह रहा है हमें पता है, तो यहां पर कोई ढकी छुकी ऐसी बात ही नहीं है कि हम कहें कि इदारों को नहीं पता। हाँ, यहां पर एक कमिटमेंट चाहिए, एक सियासी फैसले की जरूरत है और एक ऐसे अज़्म की ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था वही पाकिस्तान बचा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे, इस्लामी दुनिया में मुसलमानों के इस्तेहकाम के मुखालिफ हैं, उनसे मैं समझता हूँ कतन इस तरह की कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती और ना ही उनको इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ आहनी हाथ से निमटना होगा और उस आहनी हाथ को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी अवाम इस वक्त तैयार हैं और अगर रियासत अमली तौर पर कोई इकदाम करेगी पाकिस्तानी अवाम उसमें भरपूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इस स्टेज पर रियासत ने कोई अमली इकदाम ना किया तो मैं समझता हूं उसके बहुत ही इंतहाई खतरनाक नतायज सामने आ सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, 1.5 मिनट का वक्त हमारे पास है। जो ग्रोह पाकिस्तान की छवि आलमी सतह पर खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान की बुनियादें अंदर से कमजोर कर रहे हैं, मुल्क के अंदर जो तंजीमें, जो जमातें, जो शख्सियतें और जो इदारे उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनकी पाकिस्तानियत के बारे में आप क्या कहेंगे? 1.5 मिनट का वक्त है हमारे पास।
इस तरह के जो लोग हैं या इदारों में मौजूद हैं, उनकी ना कोई कौम होती है, ना वतन होता है, ना कोई मजहब होता है। उनका मजहब, कौम और तशख्स सिर्फ माल, दौलत और इख्तदार होता है। तो पाकिस्तान में ये खेल आसानी से खेला जाता है, इसलिए कि वहाँ पर बिकाऊ माल बहुत मिलते हैं और वही ये खेल खेल रहे हैं। उनका पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से, पाकिस्तान को मजबूत करने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यही मुल्क, इतना अजीम मुल्क बन सकता था, ये एटॉमिक पावर है, इसके अवाम में बेशुमार हिम्मत जज्बा है और इसको एक वक्त में दुनिया सियासी सतह पर, सियासी उफक पर बहुत पजीराई हासिल थी। तो ये पाकिस्तान फिर वापस आ सकता है अगर हुक्मरान या सियासतदान या वो अदारे जो पाकिस्तान को वाकई में महफूज और मुस्तहकम करना चाहते हैं अपने इरादे में दयानतदार हों और करना चाहें, वरना
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
बिल्कुल
بہت بہت شکریہ علی جعفر زیدی صاحب. اور ناظرین اسی کے ساتھ انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.